તારીખ 10/9/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 33 અને 331 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 31
બુદ્ધિપૂર્વક आशय की प्रवृत्ति मुख्य तौर से होती रहती है। सम्यक दृष्टि धर्मी जीव की बुद्धिपूर्वक के परिणाम होते हैं। देव गुरु शास्त्र के प्रति बुद्धिपूर्वक के परिणाम होते हैं। भक्ति के, पूजा के, स्वाध्याय के परिणाम बुद्धिपूर्वक होते हैं। उस परिणाम के काल में भी वो वितराग जो निमित्त होने से अपने वितराग स्वरूप को दृढ़ीभूत करने का आशय धर्मात्माओं को रहता है। केवल राग करने के अभिप्राय से वो देवगुरु शास्त्र के प्रति परिणाम उनके नहीं होते, वैसे मुख्या दृष्टियों के होते हैं। तो उनको तो अपने अंतराशय तो वो है कि शास्त्र की पूजा करते हैं कोई आचार्य, तो अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं कि मेरे परिणाम में विशुद्धि हो क्या, इस टीका करते करते मेरे परिणाम में विशुद्धि हो, ऐसे मुख्य आशय को स्वरूप के वितरागता को विशेष दृढ़ीभूत करने का होता है। ऐसी प्रवृत्ति मुख्य तौर से होती रहती है, ऐसा दिखता है। प्रश्न में ये बात है कि ऐसा दिखता है, इस पर विशेष स्पष्टीकरण चाहा तो निम्न है। ऐसे सम्यक दृष्टि के परिणाम पर विशेष प्रकाश डालने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर स्पष्टीकरण देते हैं खुद खजानी जी। उन्होंने 7 पैराग्राफ में यानी 7 मुद्दों के स्पष्टीकरण दिया है। एक बात पर 7 प्रश्न से स्पष्टीकरण दिया है। नंबर 1, स्वरूप की दृढ़ता दुराजिक प्रत्यय की वृत्ति से निश्चय ही नहीं होती। क्या कहते हैं कि जो दुराजिक प्रत्यय की वृत्ति होती है, मैंने वृत्ति अंश होता है, तो बाह्य वृत्ति अंश है क्या, तो बाह्य वृत्ति है। तो बाह्य वृत्ति से कोई अंतर्वृत्ति निश्चय जो है वो तो दिवादी प्रत्यय के वृत्ति के कारण से वो निश्चय वृत्ति हो, ऐसा नहीं बनता। क्यों कि न्याय से वो बात बैठती नहीं है, क्योंकि बाह्य वृत्ति का मुख उधर है और निश्चय वृत्ति अंतर्मुख होती है। तो बाह्य वृत्ति कारण हो और अंतर्मुख वृत्ति कार्य हो, ऐसा तो नहीं होता। इस मामले में मुमुक्षु को ऐसा समझना चाहिए कि बाह्य वृत्ति से अंतर्वृत्ति नहीं होती, बाह्य वृत्ति से अंतर्वृत्ति नहीं होती। मुद्दा इतना स्पष्ट है, इसलिए मुमुक्षुओं को भी अपने बाह्य परिणाम से कोई धर्म लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्या इससे क्या बोध क्या मिलता है, इस वचन से क्या बोध मिलता है कि हमारे जो दो गुरु शास्त्र के प्रति परिणाम है, तो मुमुक्षुओं को तो पूरा का पूरा परिणाम मार लगता है। धर्मी जीव की तरह ऐसा नहीं होता, कि कुछ अंश में वहां लगता है और कुछ अंश में उधर लगता है एक ही काल में, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा होता है ऐसा धर्मी जीव को भी, जो बाह्यांश है वो तो अपना कार्य साधक नहीं है, जो भीतर वाला अंश है वो कार्य को आत्म कार्य को साधता है। और बाह्यांश जो चलता है उनको देवगुरु शास्त्र के प्रति इससे कोई आत्मकार्य सिद्धता नहीं। इसलिए जो शास्त्र में उपयोग चलता हो सत्शास्त्र में धर्मी जीव का, तो भी उस उपयोग से कोई आत्मकार्य नहीं सिद्धता। क्या करता है? करता है इसलिए कि वो अस्थिरता से होता है, और करता है उतना नहीं है, होता है। क्या होता है? करता नहीं है लेकिन होता है, उसके प्रति उनको निषेध आता है, खेद बरतता है। क्या निषेध बरतता है? इसलिए करता नहीं है लेकिन होता है। और कोई ऐसे जानते हैं कि जितने भी हमारे बाह्य परिणाम है उससे तो कोई आत्म कार्य नहीं सदता है। आता है कहाँ आता है? परमात्मा की का में। कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कहेगा कि परसत्ता अवलंबनशील ज्ञान से आत्मा का साधन होता है, धर्म साधन होता है, मोक्ष मार्ग सिद्धता है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं कहता। ये जो परसत्ता अवलंबनशील उपयोग है वो तो शास्त्र में जो लगने वाला उपयोग है, इससे कोई मार्ग सत्ता नहीं है, मोक्ष मार्ग का साधन ये नहीं होता। तो यहां पर कहते हैं कि स्वरूप की दृढ़ता यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना तो देवा देवगुरु शास्त्र प्रति की बाह्य वृत्ति से वास्तव में नहीं होता। व्यवहार से कोई कहा जाए तो मात्र कहने की बात है लेकिन वास्तव में नहीं सजता। इस स्पष्टीकरण का एक प्रकार वो बताया है। दूसरा हाँ समय दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो, क्या समय दृष्टि नहीं होता? हो मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, किसी के भी बाह्य परिणाम से मोक्ष मार्ग सिद्धता है ऐसा नहीं है। कायदा बाकायदा समय के लिए एक प्रकार का कानून होता है, दो प्रकार का कानून नहीं होता है। और जो सम्यक दृष्टि के बाह्य अंश से मोक्ष मार्ग नहीं सदता तो मिथ्या दृष्टि के बाह्य अंश कैसे सदेगा? हाँ समझ नहीं सकता। इसलिए 108 कलश में कहा कि तन निषिध्यते मोक्ष मार्ग तिरोधानात तत् निषिध्यते। मोक्ष मार्ग को तिरोधान करने वाला, ढकने वाला होने से उसका निषेध किया है, तथा निषेध करने योग्य है। पुण्य पाप अधिकार में 108 कलश में पुण्य पाप अधिकार है, इस पुण्य के परिणाम है बाह्यांश में प्रवर्तने वाले मोक्ष मार्ग के परिणाम नहीं किंतु पुण्य के परिणाम है। और ये पुण्य के परिणाम जो है वो बंध के कारण है, मोक्ष के कारण जो बंध के कारण है वो मोक्ष के कारण नहीं होते। और क्या क्या कहा है? ये परिणाम अनिष्ट है, ये परिणाम आत्म स्वभाव के घातक है, और घातक होने से दुष्ट है, क्या कहा? दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। इतना तीन विशेषण राजमल जी ने लगाया है, लगाया कि नहीं? क्या परिचय है? कोई जीव गुरु कृपया आज्ञा से अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय करे कि मेरा आनंद वर्तमान में भी निर्मल भावमय से ही परिणमन कर रहा है, आनंद भाव से। ऐसा मुझे जब भी स्पष्ट सुनने से अनुभव का वेदन होगा, स्पष्ट रूप से अनुभव या वेदन होगा, जब ऐसा कि मुझे प्रतीत होगा कि मैं तो सारा ही निर्मल था और निर्मल भाव से ही परिणत हो रहा था, जो आकुलता का मैं मिथ्या भ्रांति में अनुभव कर रहा था तो एकदम झूठा ही था, मैं तो सदा निर्मल भाव से ही परिणमन करने वाला दृढ़ हूँ, ऐसा निर्णय करने में कोई भूल हो तो कृपया सब प्रकार के प्रेरण से स्पष्ट कर। प्रश्न है, अब क्या है कि अभी सुनागर से आए हैं, 20-25 जने आए हैं, तो चर्चा का जो समय था उसको पलट कर स्वाध्याय का बना दिया है, तो चर्चा ही चलेगी तो एक घंटा भी कम पड़ेगा और हमारे 25 मिनट तो चला गया है ना, 25 मिनट तो चला गया है, तो चर्चा का तो बाद में रखेंगे, जो भी जिसका प्रश्न हो बाद में मुझे मिल ले, ठीक है? सुबह जो 17-18 गाथा पर स्वाध्याय चला था ना, आभार गोपाल, सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है, इस पर कुछ प्रश्न है। तो यहाँ एक बात तो बताई, दूसरी बात यह करते हैं कि मन आश्रित विचार पूर्वक मान्यता से यथार्थ अखंड आश्रित सहज आंशिक वृत्ति का सद्भाव नहीं हो सकता। ये पहलू भी मनुष्य जीव के लिए बहुत समझने लायक बात है। क्या होता है कि हम लोग जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं, तो हमको न्याय से, आगम से, तर्क से, अनुमान से, मनाश्रित विचार से शास्त्र की बातें सम्मत होती है और हम ऐसा मानने लगते हैं कि हमारी मान्यता जैसा शास्त्रकार कहते हैं वैसी बन गई। पहले वैसी नहीं थी और तत्व अभ्यास के कारण हमको हमारी मान्यता ऐसी बन गई, कोई बात नहीं बैठती थी, कुछ प्रयत्न करने से बैठ भी गई। तो ऐसी मनाश्रित विचार पूर्वक मान्यता से अखंड आश्रित, मैंने अखंड आत्म तत्व है इससे आश्रय, मेरा कोई भाई साहब जाइए कि शास्त्र का अभिनय हो रहा है, शास्त्र जी का जरा धीरे से आपस में बात करिए, ताकि यहाँ तक आवाज नहीं पहुंचे, अनिवार्य हो तो आपस में धीरे से बात करें, इतना जोर से बात नहीं करें कि जिससे शास्त्र स्वाध्याय में बाधा पहुंचे। तो कहते हैं कि ऐसे विचार व पूर्वक जो मान्यता बनी, मैंने अनुभव पूर्वक मान्यता श्रद्धा नहीं बनी है लेकिन विचार पूर्वक मान्यता बनी है, तो इस कारण से कोई अखंड आत्मद्रव्य की सहज शुद्ध आंशिक वृत्ति का सद्भाव हो जाएगा कि नहीं हो सकता?
मनी तो पलटेगा,
ये बात जरूर है कि पहले मन पलटेगा क्रम तो ऐसा होगा, लेकिन पहले तो ऐसा होगा ना, इसमें अभिप्राय की भूल आती है क्या? हाँ, बहुत सूक्ष्म विषय है। पहले ऐसा हो ऐसा जानने में कोई आपत्ति नहीं क्या? जैसे विकल्प पूर्वक निर्विकल्प होते हैं, और ये विकल्प आत्मा के होते हैं पर पदार्थों के नहीं होते, तभी तो आत्मा में निर्विकल्प होगा। अब कोई ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि पहले तो विकल्प होना चाहिए ना, पहले तो विकल्प होता है ना, ये जो कौन है पहले होता है जानना अलग बात है, लेकिन पहले तो होता है ना, उसमें बदल जाता है और अभिप्राय साधन साध्य का बन जाता है। ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं द्रव दृष्टि प्रकाश में। द्रव दृष्टि प्रकाश में अभिप्राय प्रधानता की बहुत बातें स्पष्ट हुई है, अभिप्राय प्रधानता की बहुत बातें स्पष्ट हुई है। उसमें किस किस परिणाम से गलत अभिप्राय बन जाता है, इनका स्पष्टीकरण बहुत आया है। इस मुद्दे को देखते हुए हमारे वहां के भावनगर के स्वाध्याय में हमने 11 घंटा ये अभिप्राय क्या चीज है, तो कैसा उनका रोल है, क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कहां कहां कैसे काम करता है, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए हमने 11 घंटा स्वाध्याय एक अभिप्राय पर चलाया था। ये कैसे तो बनी है आपको रायाल जी से लिखने से मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो पहले मनाश्रित मान्यता विचार पूर्वक मान्यता उल्टी थी, उल्टी है वो सुलटी होती है बाद में अनुभव होता है, और निर्विकल्प मान्यता निर्विकल्प श्रद्धा पैदा होती है। तो क्रम की बात सही है, लेकिन कोई ऐसे अभिप्राय रख दे कि पहले तो ये होना, पहले तो ऐसा होना, उसके वो अनुभव वाली निश्चय की बात पीछे हो जाएगी। पहले जो पीछे वो, तो पीछे वाले का सब पीछे ही रहता है, तो पहले नहीं होता कभी, ये गलती हो जाती है। इसलिए वो सीधा निषेध करते हैं। तो जानते थे ये पत्र तो चला है मुमुक्षुओं के बीच में, तो अच्छी तरह जानते थे कि विचार पूर्वक मान्यता पहले बनती है, इसलिए पहले से विचार पूर्वक मान्यता को यहाँ बनाने वाले सोनगढ़ आ चुके हैं। अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्यों, कि इस मान्यता से तो अखंड स्वरूप का निर्विकल्प मान्यता हो जाए, ऐसी मान्यता गलती है। ये साधन हो और ये साध्य हो, ऐसा कारणकारी का वहां न्याय बैठता नहीं है, इस कारण से नहीं बैठता है क्या? इस कारण से नहीं बैठता है कि विचार पूर्वक जो मान्यता है वो बाह्य परिणाम है, और अखंड स्वरूप जो परिणाम है वो अंतर्मुखी परिणाम है। तो पहले वाला न्याय यहां भी लागू होता है। तो पहला मुद्दा मैं स्पष्टीकरण किया, वही बात इधर लागू हो जाती है। तीसरा, त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व क्या? त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व अपना शुद्ध आत्मा, इस आश्रित परिणमी हुई आंशिक शुद्ध वृत्ति में दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, वांशिक इसलिए कहा कि वो पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, साधक है, इसलिए कुछ अंश में उसको शुद्धि पैदा होती है। तीसरे कि देव गुरु शास्त्र प्रत्यय की आंशिक बाह्य वृत्ति, तीन बात हुई, एक त्रिकाली स्वभाव, दूसरा इस स्वभाव के आश्रित आंशिक शुद्ध वृत्ति जो अंतर्वृत्ति है, और दूसरी देव गुरु शास्त्र के प्रति बाह्य वृत्ति। तीनों अंश हो गया, क्योंकि तीनों मिलकर के एक पदार्थ है, इसलिए तीनों अंशों का एक ही समय धर्मी को अनुभव होता है, जिसमें मुख्य धर्म का प्रश्न नहीं। हाँ, फिर भी देवगुरु शास्त्र पर है या देवगुरु शास्त्र के बात नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो धर्मी की वृत्ति अंश है उसकी बात चल रही है। क्या एक धर्मी जीव के त्रिकाली स्वभाव अपना स्वरूप है, उसको स्वयं कहा, उस आंशिक जो परिणति चलती है वो अंतर्वृत्ति है, बाह्य वृत्ति नहीं है, वो आंशिक रूप में है। दूसरा देव गुरु शास्त्र के प्रति जो परिणाम है वो बाह्य वृत्ति है। ऐसा एक पदार्थ में तीन डिवीजन हो गया। क्या? एक पदार्थ में तीन विभाग हो गया। तो तीनों का अनुभव धर्मी को एक काल में होता है प्रमाण ज्ञान में, और प्रमाण ज्ञान में मुख्य गौण का प्रश्न नहीं है, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं का, पर का, इस वृत्ति का, उस वृत्ति का, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाता है, उसमें मुख्य गौण का सवाल नहीं होता। ऐसा एक प्रमाण ज्ञान का जो परिणमन है उसको यहाँ दर्शाया है, तो उसको भी समझना चाहिए कि जब ज्ञान प्रमाण होगा तो ऐसा तीनों अंशों का अनुभव एक साथ होगा। हाँ, इसमें मुख्य गौण नहीं है, तीनों का एक ज्ञाता दृष्टा है। क्या? तीनों का ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा में ज्ञाता दृष्टा, फिर क्या? वो सम परिणाम है, विषम परिणाम नहीं है। वो सम परिणाम होने से कहीं भी उसमें विषमता नहीं आती, एक रूप सम परिणाम है, इसमें विषमता नहीं है। ऐसे संभाव रूप परिणाम जिसको कहते हैं, गीतरागी परिणाम कहते हैं, उसमें कहीं हे उपाधेय के भी वृत्ति नहीं है। स्वरूप उपाधेय है, परद्रव्य हे है, मोक्ष का अंतर्वृत्ति उपाधेय है, बाह्य वृत्ति हे है, ये विकल्प में आएगा, लेकिन ये तो निर्विकल्प ज्ञान है। कैसा है? ये निर्विकल्प ज्ञान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो एकदम ज्ञाता दृष्टा रूप, जो भी ये है उसका ज्ञान उसमें होता है, उसमें कुछ नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को कुछ है क्या? नहीं। तो उसी जाति के परिणाम है वो, केवल ज्ञान की जाति के परिणाम है। केवल ज्ञान में कोई होता है क्या ऐसा? तो केवल ज्ञान की जाति बतला रहे हैं इधर, ऐसी बात है। नहीं, समाप्त होने का वो तो प्रमाण का तो ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान तो है ही, और नए जो है विकल्प वाली भी नई होती है और निर्विकल्प नई भी होती है। इसलिए नए का मतलब हर जगह विकल्प वाली नई लेना, ऐसा नहीं लेना। दुरुपयोग को भी निश्चय नहीं कहते हैं, वो निर्विकल्प होता है। उस वक्त जो प्रमाण ज्ञान होता है द्रव्यपर्याय का युगपत ज्ञान निर्विकल्प शुद्ध उपयोग के काल में, तो उसको निर्विकल्प प्रमाण कहते हैं कि अध्यात्म का नहीं है और अध्यात्म का प्रमाण है, और विकल्प के काल में जो है वो आगम के नहीं है और आगम के प्रमाण है। ऐसा आगम अध्यात्म की दो विवेक्षाएं चलती है नए प्रमाण के विषय में। सर्वथा ऐसा नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ विकल्प है, ऐसा सर्वथा नहीं है। ये विकल्प वाले नहीं में ऐसा है, लेकिन शुद्धोपयोग है, जो शुद्धोपयोग है उसमें तो निर्विकल्पता है, उसको निश्चय नहीं भी कहते हैं, उसको भी निश्चय नहीं कहते हैं, कि जिसको व्यवहार की अपेक्षा नहीं है ऐसा निश्चय नहीं है, तो उसको व्यवहार की भी कोई अपेक्षा नहीं होती ऐसा। तो वो निरपेक्ष नहीं है, अध्यात्म की नहीं है, वो निरपेक्ष नहीं है। और समय सार में तो आता ही है, समय सार में आता है कि अनुभूति कैसी है, अनुभूति कैसी है, तो उसने निश्चय नहीं ले लिया है। अब अनुभूति में निश्चय नहीं लिया कि नहीं लिया, समय सार के प्रारंभ की गाथा में, इसलिए अशुभ को व्यवहार नहीं बोला जाता, इसलिए यहाँ तो व्यवहार की चर्चा करेंगे, फिर इसको छोड़ करके आगे नहीं जाएंगे। अशुभ परिणाम चौथे पांचवें गुण स्थान तक होता है, सत्य सत्य होता नहीं, लेकिन उनको व्यवहार नहीं कहा जाता है। शुभ परिणाम को व्यवहार बोला जाता है, अशुभ परिणाम को नहीं, इसलिए इनकी चर्चा ही नहीं किया, वो विषय नहीं है। सौ के माप से अन्य का माप किया जाता है, हर आदमी जो भी माप करेगा कि दूसरे का, तो माप अपने से करेगा, जहां में जिसकी बुद्धि हो ताको दियो बताए, वहां को गुरु ने मानी है और कहां से लाए, लो जितनी बुद्धि हो उसके आगे लाएगा भी कहां से हो, उनके तो संभव नहीं है। इसलिए ये परिणाम का सिद्धांत है कि अपने माप से दूसरे का माप किया जाता है। अब सम्यक दृष्टि को कैसा कैसा अभिप्राय है, कि मैं त्रिकाली ही हूं, इस अनुभव में परिणाम मात्र गौण है। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में क्या चीज पड़ी है, तो मैं परिणाम में त्रिकाली ही हूं, इस अनुभव में परिणाम मात्र गौण है, परिणाम मात्र गौण है, शुद्ध अशुद्ध का सवाल नहीं, सभी प्रकार के परिणाम इसमें गौण है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे बुद्धिपूर्वक हो, सभी परिणाम इसमें गौण है। एक भी परिणाम ऐसा नहीं है कि उसमें तो उसकी मुख्यता की जाए। ऐसे धर्मी को, कि धर्मी का स्वरूप ऐसा है, परिणाम की अपेक्षा से धर्मी का ऐसा स्वरूप है, ऐसे धर्मी को कभी परिणाम की मुख्यता नहीं होती। मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं को कभी परिणाम की मुख्यता होती ही नहीं, अतः उसे अन्य धर्मी जीव में भी परिणाम की मुख्यता नहीं दिखाई देती। इसलिए इनका मानाप करने का दृष्टिकोण बदल गया, जो अपने परिणाम की मुख्यता नहीं करता है वो दूसरों के परिणाम की भी मुख्यता नहीं करेगा, क्योंकि परिणाम का ये सिद्धांत है कि अपने नाप से दूसरे का नाप किया जाता है। मुख्या दृष्टि को अपना परिणाम मुख्य रहता है तो दूसरा का भी परिणाम मुख्य करेगा, दूसरे के परिणाम में जो भी दोष है, अपराध है, उनकी इतनी मुख्यता करेगा कि उसको क्षमा प्रदान करने का समर्थ नहीं रहेगा। ये बात हो जाएगी। क्या कहते हैं कि धर्मी ऐसे होते हैं कि इनको अपना त्रिकालिक स्वरूप ही मुख्य रहता है और किसी भी परिणाम की मुख्यता नहीं होती। तो ऐसे धर्मी को दूसरे के परिणाम की भी मुख्यता नहीं होती है। उसे अन्य धर्मी जीव में भी परिणाम की मुख्यता नहीं दिखाई देती। दूसरे धर्मी जीव हो उसका भी परिणाम की मुख्यता नहीं करेगा। वो मुद्दा एक धर्मी जीव के लक्ष्य में रखकर ही बताया है कि दूसरे धर्मी के भी परिणाम की मुख्यता वो नहीं करेगा। जैसे कि मात्र परिणाम देखने वाले मिथ्या दृष्टि को प्रवृत्ति की मुख्यता दिखती ही है।
ब्रह्म का अर्थ है आत्मा का स्वभाव। जो त्रिकाली स्वभाव है उसको ब्रह्म कहने में आया है। उसमें विचरना, उसमें परिणमन करना, उसमें लीन होना, तो ब्रह्मचर्य है। चर्य मैंने चरना, आचरण करना, चरना, रमना, जमना, लीन होना, एकाग्र होना, ध्यान होना, ये सभी उत्तम ब्रह्मचर्य को सूचित करने वाले शब्द हैं। विकार और पर के संग से रही आत्म स्वभाव कैसा है, वह जाने बिना उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता। क्या ब्रह्म मैंने आत्म स्वभाव तो त्रिकाल विकार रहित है, किसी भी प्रकार के विकार रहित है, और वो कैसा है, परसंग रहित है, किसी को कोई संग भी नहीं है, उसको असंग स्वभाव भी कहने में आता है। अविकार है, असंग है, ऐसे आत्मा को जाने बिना उसमें लीन हो सकते नहीं। कैसा है ऐसा जान, जैसा है वैसा जाने, तभी इसमें लीन होने का प्रयोग हो सकता है, बिना जाने इसमें लीन होने का प्रयोग नहीं हो सकता। लौकिक ब्रह्मचर्य शुभ राग है, ये जो लौकिक में ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो तो शुभ राग है, जैसे ब्रह्मचर्य का परिणाम अशुभ राग है, वैसे ब्रह्मचर्य का परिणाम है वो शुभ राग है। हाँ, वैसे वो पर्याय प्रधानता से कहा गया है, स्वभाव की प्रधानता से कहें तो न तो आत्मा शुद्ध है न तो आत्मा अशुद्ध है, जैसा है वैसा है, वो पर्याय प्रधानता से तो कहा। पर्याय में शुद्धि अशुद्धि का धर्म है क्या, ये पर्याय का धर्म है, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि सापेक्ष होती है और अशुद्धि शुद्धि सापेक्ष होती है, और ये दोनों चीज पर्याय में पाई जाती है, त्रिकाली स्वभाव में नहीं। क्यों कि अगर त्रिकाली स्वभाव को शुद्ध कहें तो अशुद्धि की अपेक्षा उसमें आए बिना रहती नहीं। जैसे कि आत्मा को स्वभाव को मुक्त कहे तो बंध की अपेक्षा आए बिना नहीं रहती। तो बंध मुक्ति ये जैसे पर्याय का स्वभाव है, वैसे शुद्धि अशुद्धि भी पर्याय का धर्म है, ये त्रिकाली स्वभाव का धर्म नहीं है। फिर भी कहा जाता है तो पर्याय प्रधानता से कहा जाता है, लेकिन स्वभाव की प्रधानता से देखे तो वो जैसा है वैसा है, बस जैसा है वैसा है। ये राजमल जी कहते हैं, हाँ, तो वो पर्याय प्रधानता से बात है। क्या वहां तो शुद्ध का अर्थ क्या कहा है, तो कौन से अर्थ इसमें कहता है ना, ओम इको खलु शुद्धो, बड़ा ठीक है, अर्थ इसमें गाथा है ना, क्या कहा वहां, शुद्ध का क्या अर्थ किया। जब आप प्रश्न उठाते हो तो आपको स्मृति में भी होगा कि वहां आचार्य महाराज शुद्ध को कैसे कहते हैं, कि जिसमें पुण्य नहीं, निर्जरा नहीं, मोक्ष नहीं, नौ तत्वों की परिपाटि से जो रही थी उसको शुद्ध कहा, आके नहीं कहा। क्या आपको स्मृति में है कि नहीं है शुद्ध का नहीं, देखें शास्त्र में से देखें, ये समझ पा रहे प्रभावों से पृथक है इसलिए शुद्ध है, और सभी नौ तत्वों से भी, हाँ तो वो बात लिया है ना, के विशेष मैंने चारों गति की पर्याय स्वरूप में नहीं है, वो वैभाविक पर्याय है जीव के। नर नारक आदि, आदि में बाकी के दोनों गति ले लेना, आदि जीव के विशेष और अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, मोक्ष भी ले लिया। तो स्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्व है उनसे टंकोत्कीर्ण एक विनायक स्वभाव रूप भाव द्वारा अत्यंत भिन्न है इसलिए शुद्ध है, अकेले पर से भिन्न है ऐसा नहीं। नौ तत्वों जो व्यावहारिक भेद रूप भाव है उसमें संवर निर्जरा मोक्ष सभी आ जाता है इसलिए शुद्ध है। ये शुद्ध की परिभाषा क्या, हम इको शुद्धो, ये खलु शुद्धो में ये खलु शुद्धो है आचार्य महाराज के अभिप्राय में, तो वो बात है। उसमें राग मलिन है, अशुद्ध है, और मैं राग रहित हूँ इसलिए शुद्ध हूँ ऐसी बात नहीं लिया। नौ तत्वों से अत्यंत भिन्न हो इसलिए शुद्ध हो, तो ये शुद्ध की तो परिभाषा, यानी जहाँ जो कहना चाहते हैं वहां वैसी समझना चाहिए। जैसा है वैसा है, इसमें अभिप्राय कहने का यह है किसी एक गुण से कहेंगे तो उतना भेद हो जाता है। ज्ञान स्वरूप कहने से क्या अकेला ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है क्या? अगर आत्मा आनंद स्वरूप है तो क्या अस्तित्व स्वरूप नहीं है क्या, विभुत्व स्वरूप नहीं है क्या? तो इनमें तो अनंत गुण है, ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है इनकी, अनंती है। अब बोलने में तो किसी एक गुण से बोला जाएगा, एक गुण से बोलने से बाकी के गुण है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? इसलिए उसमें ऐसा अनंत गुण का एक रूप जैसा है वैसा है ऐसा लेना। क्या अनंत गुण का एक रूप जैसा है वैसा है, इसलिए वहां वेद का भी निषेध सहज रूप से आ जाता है। अब चलते विषय में क्या कहते हैं कि लौकिक ब्रह्मचर्य सुहराग है, धर्म नहीं है, और उत्तम ब्रह्मचर्य है वो धर्म है, राग नहीं है। कि जीव का वीतराग भाव है लेकिन किसी भी प्रकार का राग नहीं है, शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना बाह्य विषयों की रुचि दूर नहीं होती। अनादि से जीव को पांचों इंद्रियों के विषय में सुख बुद्धि है, क्या है? पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि है, और सुख बुद्धि होने से इन्हीं से पांचों इंद्रियों के जो अशुभ राग है उनकी रुचि भी है। वितराग देव तो वो फरमाते हैं कि अशुभ राग की तो रुचि छोड़ो, किंतु शुभ राग की भी रुचि छोड़ो। जब शुद्धता वितराग भाव की उत्पत्ति होगी, क्योंकि राग आखिर में राग ही होता है। राग है सो वितरागता नहीं, और वितरागता है सो राग नहीं। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध स्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूर नहीं होती। मेरी सुख दशा मेरे ही स्वभाव में से प्रकट होती है। मेरी जो सुख की दशा है वो मेरे स्वभाव में से आएगी, जड़ परमाणु में किसी भी प्रकार के विषय में से नहीं आएगी। इसलिए सुख के प्रकट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मेरा सुख कहीं भी नहीं है, मेरा सुख मेरे आत्मा में है। इसलिए सुख के लिए मुझे किसी और देखना नहीं है। ऐसी पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना, पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना विषयों की रुचि छूट नहीं सकती। क्या कहना चाहते हैं कि विषयों का त्याग करने से विषयों की रुचि नहीं छूटती है, लेकिन विषयों को स्वभाव से भिन्न अनुभव करने से विषयों की रुचि छूटती है। यानी स्वभाव में सुख है, ऐसी स्वभाव की रुचि होने से जड़ की रुचि छूट जाती है। इसलिए कहां से शुरू करना, ये बात इसमें क्रम की आती है। जो इस विज्ञान को नहीं जानते वो पहले त्याग करता है। क्या करता है? पहले पर पदार्थ का त्याग कर देता है, और भीतर में उसी पर पदार्थ में सुख बुद्धि और रुचि है वो चालू रहती है। फिर वो क्या करेगा, त्याग करके परिणामों का दमन करता है। दमन करने से ये परिणाम का विकार विभाव मिटने वाला नहीं है। तो ये विभाव रोग को मिटाने के लिए सही उपाय नहीं है। ये कहेंगे बड़े बड़े महापुरुषों ने त्याग तो किया है, इसलिए हम त्याग करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से त्याग किया वो तुम नहीं जानते। बाह्य त्याग देख करके उसकी नकल करने को जाता है तो ऐसे तो काम होने वाला नहीं है। जिन महात्माओं ने बाह्य त्याग किया उनमें भीतर में कौन सी असलियत थी उसको समझे बिना सिर्फ बाहर से नकल करेंगे तो ये बंदर जैसे ठंड को उड़ाने के लिए जुगनों को पकड़ते हैं, ऐसी बात हो जाएगी। ये दृष्टांत दिया था कि बंदर लोग थे, उनको भी ठंड लगती थी। तो मनुष्य ने तो अग्नि पिटा करके लकड़ी को जला करके ठंडी उड़ाई, लेकिन उनको तो पता नहीं कि अग्नि क्या चीज है। उसने देखा कि जैसा जुगनू है वैसी अग्नि है, हमारे पास तो कुछ साधन नहीं है, पकड़ो उसको, उससे कोई ठंड उठने वाली नहीं है। ऐसे सिर्फ त्याग कर दें और भीतर में स्वभाव सुख की रुचि बिना विषय सुख की रुचि चालू रहे और त्याग करें, तो इससे त्याग का कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। एक नकल हो जाती है, ऐसे नकल करनी चाहिए नहीं। और ये कार्य पद्धति उल्टी है, सुलटी नहीं है। पहले हम हमारे परिणाम को ठीक करें, फिर परिणाम ठीक होने से बाह्य विषयों की प्रवृत्ति में रस ही नहीं आएगा। उसमें जिसको रस नहीं है वो प्रवृत्ति सहज छूट जाती है या छोड़ देने में आदमी कोई दिक्कत होती नहीं है। क्या कहते हैं कि बाह्य में विषयों का त्याग कर दे किंतु अंतरंग से विषयों की रुचि दूर न करे तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री घरबार छोड़कर त्यागी हो जाए और शुभ भाव छोड़कर शुभ भाव भी करें किंतु उस शुभ भाव में जिसे रुचि है शुभ भाव में शुभ राग में जिसे रुचि है एवं उसमें धर्म बुद्धि है कि हमने इतना त्याग किया उसके वास्तव में विषयों की रुचि दूर नहीं हुई है। क्या होगा कि इनको शुभ भाव के फल में क्या होगा बाह्य विषयों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो बाह्य विषयों को अभी छोड़ दिया और शुभ राग में रुचि रखा उसको धर्म मान करके पालन करने लगा तो जो विषयों का त्याग किया है उसका कारण को उपार्जन करने लगता है। उस वक्त क्या करता है कि ये जो पुण्य भाव है वो तो फिर से पंचेंद्रियों का मिलने का
ही कारण बनता है। तो उसने त्याग किया वो तो बेकार हो गया तो अभी त्याग किया आगे उसका संयोग होना होना। जैसे अशुभ का फल आए बिना नहीं रहता वैसे शुभ का फल भी आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए वास्तव में उनको विष्णु की रुचि दूर हुई नहीं। शुभ अथवा अशुभ विकार परिणाम है दोनों विकार है। अशुभ तो विकार है ही लेकिन शुभ परिणाम भी विकार है। दोनों विकार परिणामों में एकता बुद्धि क्या कर्तृत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि एकत्व रूप से तन्मय होकर के परिणमन करना वही वास्तव में अधर्म परिणति है वही अब्रह्म अब अब्रह्मचर्य है। चर्य मैंने चरणा ब्रह्म मैंने आत्मा आत्मा को छोड़कर मैंने ब्रह्म को छोड़कर दूसरे विभावों में एकत्व करना ये अब्रह्मचर्य है क्योंकि ये अब्रह्म परिणाम है आत्म परिणाम नहीं है। ये विभाव परिणाम है वो अनात्म परिणाम है अब्रह्म परिणाम है उसमें एकत्व करना उसको ही वास्तव में अब्रह्मचर्य कहने में आता है। ये अलौकिक ब्रह्मचर्य है। लौकिक ब्रह्मचर्य शुभ राग रूप होता है और अलौकिक ब्रह्मचर्य आत्मा में लीन होना ये होता है। ऐसे अलौकिक अब्रह्मचर्य में भी विकार से एकत्व होना लीन हो जाना यही ब्रह्मचर्य है मूल में। और विकार रहित शुद्ध आत्मा में परिणाम की एकता ही ब्रह्म परिणति है उसी को ही ब्रह्मचर्य परमार्थ ब्रह्मचर्य उसको कहने में आता है। यहाँ पर सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि की चारित्र दशा के ब्रह्मचर्य की बात है। यहाँ जो हमारे यहाँ विषय चलता है ये सम्यक दर्शन पूर्वक क्योंकि उत्तम शब्द लगाया है ना सिद्ध ब्रह्मचर्य का ये दिन नहीं ये उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ये उत्तम शब्द है ये सम्यक्त्व को सूचित करता है। जिसको सम्यक्त्व का सद्भाव है उसी को उसी के वितराग भाव को वितरागी स्थिरता को स्वरूप लीनता को उत्तम ब्रह्मचर्य कहने में आया है। इसलिए यहाँ पर तो सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि की चारित्र दशा के ब्रह्मचर्य की बात चल रही है। जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर क्या किया मुनियों ने, कि जगत के सभी विषयों से उदासीन होकर आत्म स्वभाव में चर्या प्रकट हुई है वो ब्रह्मचर्य है, और उसके फल स्वरूप उनको परमात्म पद अवश्य मिलेगा ही, उसके फल में देवलोक नहीं मिलेगा। यदि शुभभाव रूप ब्रह्मचर्य है उसके फल में तो वहां देवलोक मिलेगा, लेकिन ये उत्तम ब्रह्मचर्य है इसके फल में तो परमेश्वर दशा की प्राप्ति होगी। तभी मुनिराज पंच परमेष्टि में तो है ही, लेकिन साधु दशा में है, वो आगे जा करके अरिहंत दशा में आएंगे, ये परमेश्वर पद है उसकी प्राप्ति होगी। स्वभाव में एकता थी और पर से निरपेक्ष हुआ, स्वभाव में एकत्व किया, एकता मैंने स्वभाव में लीनता किया, एकत्व किया और पर से निरपेक्ष हुआ। वहां जो वितराग भाव प्रकट हुआ वही ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर श्री पद्मनंदी मुनिराज ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं कि यहाँ एक श्लोक का उद्धरण किया है पद्मनंदी मुनिराज के, पद्मनंदी पंचविंशति तामस है। अभी आधा घंटा हुआ है, जो तात्पर्यभूत बात थी वो तो प्रारंभ में ही उपोद्घात में ही इस विषय की कही है, इसी का ही विस्तार फिर आगे करेंगे। वो अब कुछ कोई विषय लेना है पांच घंटे के लिए जी, अच्छा अच्छी बात है, वहाँ तक विषय नहीं ले सकते हैं। मैं द्रव दृष्टि प्रकाश 250 नंबर का बोल है, तीसरा विभाग की चर्चा में। विषय तो बहुत सुंदर है मुमुक्षुओं के लिए, श्री निहाल चंद्र जी सोगानी की चर्चा का संकलन है, मुमुक्षुओं के साथ उनकी जो तत्व चर्चा धर्म चर्चा चलती थी उसको इस तीसरे विभाग में संकलन की संपादित की गई है। जरी विषय यह चला है कि किसी मुमुक्षु ने ऐसा प्रश्न किया है, चर्चा में तो प्रश्न उत्तर चलता है, आत्म प्राप्ति कैसे होवे, क्या प्रश्न चला था, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हमें कैसे होवे, इस विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछे गए प्रश्न का ये विस्तृत उत्तर है। चर्चा में जो बात चली यही विषय की चली है, बहुत सुंदर बात चली है इस जगह पे कि रूचि में खरेखर अपनी जरूरत लगे तब अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। क्या कहते हैं कि जिसको आत्म शांति आत्मिक सुख की रुचि होवे तो क्या है कि जिसको आत्म स्वरूप की आत्मिक सुख की रुचि होती है
उनको पर पदार्थ में सुख की रुचि नहीं होती है। जिसको पर पदार्थ में सुख की रुचि तीव्र होती है उनको आत्मा के सुख की रुचि नहीं होती है। रुचि दो प्रतिपक्ष पदार्थों की कभी हो सकती नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जिसको रुचि में रुचि काय से संबंध रखती है, जरूरत से संबंध रखती है। रुचि में क्या है, जरूरत है कि मुझे ये होना। जैसे पतंगा को दीपक की रुचि है, क्या दृष्टांत रुचि का ले लें तो यह है कि पतंगा को दीपक की रुचि है। तो कैसी उनको रुचि है कि वो उड़ के उसमें जा पड़ता है, वो बिल्कुल इससे दूर रहना नहीं चाहता, तो इतना भी विचार नहीं कर सकता कि अगर मैं देख उतना नजदीक चला जाऊंगा कि बिल्कुल दूर नहीं रहूं तो मैं खुद जल जाऊंगा, ये भी बात वो सोचने वाला नहीं है। भले ही तो अपनी जात से वो खत्म हो जा रहे लेकिन उनको चाहिए दीपक, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वो सिवा दीपक दूसरे को देख ही नहीं सकता, क्या सिवा दीपक दूसरे को देख ही नहीं सकता, ऐसी स्वरूप की रुचि होनी चाहिए। ऐसा कहने का अभिप्राय है कि दूसरों को देखे ही नहीं, अपनी रुचि में अपने आत्मा को ही देखे, दूसरों को देखे ही नहीं।
रावत की बात है कि मुनि की,